नमस्कार भारत, तारीख 22 सितंबर दिन मंगलवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। अमेरिका के उद्योग जगत का कहना है कि मोदी के आने के बाद भी भारत में बिजनेस की राह आसान नहीं, लाल फीताशाही भी है बदस्तूर कायम।
It was like India took British bureaucracy, doubled it and added 10 times the people. And it just makes getting anything done almost...
भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव कम करने के लिए मिले दोनों देशों के सैन्य अधिकारी। नेपाल में नए संविधान से भारत की रूखी प्रतिक्रिया पर क्या कहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड। फैला उजियारा में आज चर्चा अमीर खुसरो की। लेकिन थोड़ा सा रुकेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज वॉशिंगटन में अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से मुलाकात करेंगी। भारतीय विदेश मंत्री वहां भारत अमरीका रणनीतिक और वाणिज्य संवाद में हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरीका यात्रा से पहले सुषमा स्वराज के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि इस बीच अमरीकी वाणिज्य मंत्रालय ने भारत में आर्थिक सुधारों की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई है। अमेरिका में रिपब्लिकन स्कॉट वॉकर ने राष्ट्रपति पद की रेस से हटने की घोषणा की है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी हासिल करने की होड़ में कभी सबसे आगे रहने वाले वॉकर ने कहा कि वो इसलिए मैदान छोड़ रहे हैं ताकि एक सकारात्मक और अनुदार संदेश साफ तौर पर उभर कर सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप के सुर्खियों में आने के बाद वॉकर की लोकप्रियता में गिरावट आई। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने कहा है कि प्रवासियों के कारण यूरोप की सीमाएं खतरे में पड़ रही हैं और इस समस्या से एकजुट होकर निपटने की जरूरत है। ये बात उन्होंने प्रवासी संकट से निपटने के लिए सघन कूटनीतिक पहल की शुरुआत के मौके पर कही, जो हफ्ते भर चलेगी। उन्होंने कहा,
A bevándorlók már nem csak dörömbölnek, de ránk is törik az ajtót.
प्रवासी न सिर्फ खड़खड़ा रहे हैं बल्कि दरवाजों को तोड़ रहे हैं। कुछ सौ नहीं, कुछ हजार नहीं, बल्कि लाखों लाख प्रवासी हंगरी और यूरोपीय संघ की सीमाओं को घेरे हुए हैं। पता नहीं ये सब कहां जाकर खत्म होगा, क्योंकि इन लोगों के पीछे पीछे और लाखों लोग चले आ रहे हैं। ये थे हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के शब्द। पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया प्रवासियों को लेने की यूरोपीय संघ की प्रस्तावित कोटे वाली व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। वहीं प्रवासी संकट पर आज से ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के गृह मंत्रियों की बैठक हो रही है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में एक अपाहिज व्यक्ति को आज फांसी दी जानी है, लेकिन अधिकारी ये नहीं बता पा रहे हैं कि मौत की सजा पर अमल कैसे होगा। पाकिस्तान में जेल नियमों के अनुसार सजा पर अमल के लिए कैदी को फांसी के तख्ते पर खड़ा होना जरूरी है, लेकिन 43 वर्षीय अब्दुल बासित खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उनके शरीर का कमर से नीचे वाला हिस्सा लकवाग्रस्त है। कई मानवाधिकार समूह हत्या के मामले में मृत्युदंड पाने वाले अब्दुल बासित को फांसी न दिए जाने की मांग कर रहे हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सत्ता अपने हाथ में लेने वाले सैन्य जनरल ने कहा है कि वो देश की बागडोर एक असैन्य सरकार को सौंपने के लिए तैयार हैं, जैसा कि क्षेत्रीय वार्ताकारों ने प्रस्ताव रखा था। और पोप फ्रांसिस क्यूबा की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में सेंटियागो पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने क्यूबा के पूर्वी शहर होलगुइन में हजारों लोगों के साथ विशाल प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। अमरीकी वाणिज्य मंत्रालय ने भारत में आर्थिक सुधारों की धीमी रफ्तार पर निराशा जताई है। अमरीकी उद्योग जगत का कहना है कि मोदी के आने के बाद भी भारत में बिजनेस करना अभी भी बेहद मुश्किल है और लाल फीताशाही में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आ रहा। भारत अमरीका रणनीतिक और वाणिज्यिक साझेदारी को गति देने के लिए वॉशिंगटन में सोमवार से शुरू हुए दो दिवसीय बैठक में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वाणिज्य राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण हिस्सा ले रही हैं। वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया अभियान और आर्थिक सुधारों के ऐलान को लेकर अमरीकी उद्योग जगत काफी उत्साहित नजर आया था, लेकिन पिछले महीनों में यहां एक बार फिर से उसी तरह की आवाजें सुनाई देने लगी हैं जो मनमोहन सिंह सरकार की दूसरी पारी में सुनाई देती थीं। सोमवार को वॉशिंगटन स्थित जाने माने थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउमेंट में बोलते हुए अमरीकी वाणिज्य मंत्री पेनी प्रिस्कर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई अच्छे कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी भारत अमरीका का 11वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है।
Our commercial relationship has simply not lived up to its enormous potential.
उनका कहना था, हमारी व्यापारिक साझेदारी अपनी असीमित क्षमता के आसपास भी नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने कहा, ये बात दशकों से कही जा रही है, लेकिन आज जो दुनिया का आर्थिक माहौल है, उसमें दोनों ही देशों में से कोई भी अपनी क्षमता से कहीं नीचे चल रहे प्रदर्शन का बोझ नहीं संभाल सकता। अमरीकी वाणिज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि वो भारत को आसानी से बिजनेस करने वाले देशों की सूची के पहले 50 देशों में ले आएंगे, लेकिन उसके लिए अभी लंबी दूरी तय करने की जरूरत होगी। विश्व बैंक की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कुल 189 देशों की सूची में भारत का नंबर 142 है। वाणिज्य मंत्री प्रिस्कर का कहना था कि अनुबंधों को लागू करने की आसानी के मापदंड पर भारत 189 देशों की सूची में 186वें नंबर पर आता है। उन्होंने कहा कि दो दिनों की इस बातचीत में इस पहलू पर खास तौर से बात होगी और अमरीका इस क्षेत्र में अपने अनुभव और कॉन्ट्रैक्ट्स को समय सीमा के अंदर लागू करने की तकनीक को भारत के साथ बांटेगा। इसी बैठक में भारतीय वाणिज्य राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की अर्थव्यवस्था की खूबियों का जिक्र किया, ऊर्जा के क्षेत्र में मिली सफलताओं का जिक्र किया और साथ ही कहा कि व्यापार के लिए सही माहौल बने उसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है।
A high powered committee which is going through the whole process of identifying those laws which are archaic, which have to be dumped. Also identify certain laws which injurious.
उनका कहना था, ये कमेटी पुराने बेतुके कानूनों की समीक्षा कर रही है और साथ ही उन कानूनों को भी देख रही है जो बिजनेस के लिए नुकसानदेह हैं। बैठक में अमरीकी और भारतीय उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियां भी मौजूद थीं। उद्योगपति डेविड कोट का कहना था कि भारत में जो नौकरशाही है उसके रहते हुए कुछ भी करना असंभव सा लगता है।
It was like India took British bureaucracy, doubled it, and added 10 times the people. And it just makes getting anything done almost impossible.
वो कह रहे थे, ऐसा लगता है जैसे भारत ने ब्रिटेन से नौकरशाही ले ली, उसे दोगुना कर दिया और उसमें 10 गुना लोग जोड़ दिए। अगर वहां कुछ करना है तो नौकरशाही को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और बिजनेस को मदद करने का माहौल बनाना होगा। वहीं मौजूद भारतीय उद्योगपति सुनील भारती मित्तल, किरण मजुमदार शॉ और साइरस मिस्त्री ने कहा कि सुधार आया है, लेकिन जिन कदमों का ऐलान किया जाता है उन्हें मुस्तैदी से लागू करने की जरूरत है। भारत अमेरिका वाणिज्य रिश्तों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की अर्थव्यवस्था अभी ढलान पर है। चीन के बारे में अमेरिका में एक नकारात्मक और कड़वाहट भरा माहौल है और भारत को इसका फायदा उठाना चाहिए। भारत अमेरिका परमाणु समझौते की नींव रखने वालों में से एक एश्ले टेलिस का कहना है कि अगर हालात नहीं बदले तो दोनों ही देश शायद ऐसे रणनीतिक साझेदार होंगे जो व्यापार मामलों में तकरीबन हर मंच पर एक दूसरे के खिलाफ नजर आएंगे। ब्रजेश उपाध्याय, BBC, वॉशिंगटन।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ाने की कोशिश। रुख भारत का करते हैं। सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने कल नियंत्रण रेखा के चकंद बाग संपर्क केंद्र में मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं तो दूसरी ओर अलगाववादियों ने गौमांस पर प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
ये बातचीत भारत और पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेड कमांडरों के बीच पूंछ के चकांदा बाग संपर्क केंद्र पर हुई। भारत की तरफ से ब्रिगेडियर HS सरीन और पाकिस्तान की तरफ से पूंछ रावलाकोट के ब्रिगेड कमांडर ने तनाव के कारणों को लेकर अपनी अपनी आशंका जताई। ताहम सेना की उत्तरी कमांड ने इस भेंटवार्ता का ज्यादा विवरण नहीं दिया। कमांड के प्रवक्ता कर्नल मनीष मेहता ने बताया कि भेंटवार्ता एक घंटे तक जारी रही। गौरतलब है, सैनिक अधिकारियों के स्तर की ये बातचीत एक साल बाद हो रही है। पिछले वर्ष भी अक्टूबर में जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों तरफ की सेनाओं के बीच लगातार मुठभेड़ का सिलसिला चल पड़ा तो सीमावर्ती क्षेत्रों से हजारों नागरिकों ने पलायन किया। 20 से अधिक नागरिक मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। उस वक्त भी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के स्तर पर बातचीत हुई थी और तनाव की संभावनाओं को खत्म करने पर सहमति हुई थी, लेकिन बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रुक रुक कर जंग के बादल मंडलाते रहे। दोनों मुल्कों के बीच एलओसी पर युद्ध विराम का समझौता सन 2003 में हुआ था, लेकिन तब से ही दोनों एक दूसरे पर इस समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाते रहे हैं। इस दौरान कश्मीर घाटी में सैनिक अधिकारियों का मानना है कि चरमपंथ में बढ़ोतरी हुई है और इस वर्ष 30 से 40 युवक चरमपंथी गुटों में शामिल हो गए हैं। उत्तरी कश्मीर में रहस्यमयी हत्याओं से भी डर का माहौल है। पिछले दिनों सोपोर में आजाद हमलावरों ने एक पूर्व चरमपंथी और उसकी गोद में 3 साल बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। गांव मास पर करीब एक शताब्दी पुराने कानून को फिर से लागू करने के अदालती आदेश पर भी अलगाववादियों ने आंदोलन छेड़ रखा है। घाटी की स्थिति का जायजा लेने के लिए भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिन की यात्रा आरंभ की। वो कश्मीर और लद्दाख में पाकिस्तान और चीन के साथ लगने वाली सीमा की अगली चौकियों का मुआयना करेंगे। उन्होंने जम्मू में मीडिया को बताया कि वो चीन और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंधों की इच्छा रखते हैं। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
आठ साल के लंबे गतिरोध के बाद आखिरकार रविवार को नेपाल का संविधान लागू हो गया, लेकिन नेपाल के राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि भारत ने इसका स्वागत करने में बहुत गर्मजोशी नहीं दिखाई है। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति और लोकतंत्र की इस शुरुआत का श्रेय नेपाल में 10 सालों तक चले माओवादी आंदोलन को दिया जाता है। इस आंदोलन के शीर्ष नेतृत्व में रहे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से BBC नेपाली सेवा के संवाददाता महेश आचार्य ने बात की। सबसे यही सवाल पूछा कि भारत की ओर से आई इस रूखी प्रतिक्रिया को वो कैसे देखते हैं।
हमें इससे थोड़ा दुख तो जरूर हुआ है, क्योंकि नेपाली जनता के बहुत लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद और नेपाल की पार्टी नेताओं और जनता की काफी मेहनत के बाद संविधान सभा से संविधान आया है और नेपाल की ये संविधान सभा नेपाल की शांति प्रक्रिया के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। तो अब संविधान सभा से संविधान बनी है तो हमें उम्मीद थी कि भारत भी इसमें एक गर्व की महसूस करेगा और सबसे पहले भारत ही स्वागत करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है कि भारत को कुछ कंसर्न है और वो मुक्त कंठ से स्वागत नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा दुख तो जरूर हुआ है।
जैसे नेपाल संविधान घोषणा करने के संघार में था, उसके एक दो दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल में आए और उन्होंने आपसे भी मुलाकात किया था, तो उस वक्त क्या बात की उन्होंने?
उन्होंने कहा कि प्रमुख रूप से नेपाल की तराई मधेश में वहाँ की जो स्थिति बनी हुई है उसे हमें एक ज्यादा कंसर्न है, इसलिए उनका मेन मकसद ऐसा दिखाई देता था कि इसको कुछ दिन के लिए आप ये प्रक्रिया को रोक लीजिए और उनको भी साथ ले आकर के वार्ता के माध्यम से समाधान करने की कोई उपाय है तो आप लोग इसके लिए कोशिश करें, यही सुझाव उनका था।
लेकिन आप लोगों ने वो अस्वीकार कर दिया?
नहीं, हमने सीधा अस्वीकार तो नहीं किया। मैंने तो ये कहा कि आपकी ये सजेशन के ऊपर हम ध्यान दे सकते थे, लेकिन अब तो हमारी सारी प्रक्रिया खत्म हो गई है और परसों घोषणा करना ही सिर्फ बाकी है, तो ये रोकना अब हमारे लिए मुमकिन नहीं है।
अब ये संविधान को लेकर तराई में खासकर असंतुष्टि जाहिर हो रहा है, प्रमुख नेता क्या सोच रहे हैं?
बातचीत के जरिए हम संबोधन कर सकते हैं समस्या समाधान में, जैसे कि मधेश केंद्रित दल का या मधेशी जनता का भी एक हद तक यह है कि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व के बारे में सवाल है, तो वो हम संविधान संशोधन करके उनकी मांग को हम संबोधन कर सकते हैं। और दूसरी बात क्षेत्र निर्धारण की बात है, उसमें पॉपुलेशन को के आधार पर करने के लिए भी हम तैयार है, और रही बात प्रदेश की सीमांकन की बात है, वो भी टेबल में बैठ करके उनकी जेन्युइन कंसर्न को हम फिर आयोग के थ्रू सुझाव लेकर के हम संबोधन कर सकते हैं।
ये थे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और माओवादी नेता पुष्प कमल दहाल प्रचंड, जिनसे की बात कर रहे थे BBC नेपाली सेवा के संवाददाता महेश आचार्य। और अब कार्यक्रम में वक्त है अखबार के पन्ने पलटने का। अशोक बहुत मुस्तैदी के साथ बैठे हुए हैं, क्या है अखबार कह रहे हैं?
जी मोहनलाल जी, आरक्षण के मुद्दे पर संघ और भाजपा में जिस तरह मतभेद उभर कर सामने आए हैं, कई अखबारों ने इसे पहली खबर बनाया है। अमर उजाला की सुर्खी, आरक्षण पर भागवत के बयान से मचा सियासी घमासान, तो दैनिक जागरण कहता है आरक्षण पर से भाजपा ने किनारा किया। RSS प्रमुख के बयान पर भाजपा ने जताई असहमति। हिंदुस्तान की सुर्खी, आरक्षण की समीक्षा से भाजपा का इनकार। अखबार ने एक बॉक्स में भागवत का यह बयान छापा है कि आरक्षण का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जनसत्ता ने इस बयान पर RJD मुखिया लालू प्रसाद की प्रतिक्रिया को तवज्जो दी है और प्रतिक्रिया है, माई का दूध पिया है तो आरक्षण खत्म करके दिखाओ। वहीं नीतीश कुमार कहते हैं आरएसएस का ये बयान भाजपा के असली रंग और सोच को दर्शाता है। अब किसान दे रहे हैं मोदी को गाली, ये बयान है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का, जो छपा है अमर उजाला में। खबर में कहा गया है कि मथुरा में कांग्रेस की बैठक में राहुल ने मोदी और संघ पर फिर निशाना साधा और सरकार पर लोगों से किए वादे पूरा न करने का आरोप लगाया। हिमाचल के बिलासपुर में सुरंग से 9 दिन के बाद निकले मजदूरों की खबरें दैनिक भास्कर, जनसत्ता, अमर उजाला और हिंदुस्तान जैसे कई अखबारों ने सचित्र छापी हैं। जनसत्ता की सुर्खी है मौत से संघर्ष में जीत गई जिंदगी।
कितने बड़े चमत्कार की बात है कि 9 दिन तक ये जो मजदूर है फंसे हुए,
कुशल निकल जाना बहुत बड़ी बात है। दैनिक भास्कर में खबर है बीसीसीआई के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की आंखें हुई दान। खबर के मुताबिक कल यानी सोमवार को कोलकाता में डालमिया का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन इससे पहले उनकी आंखें वन मुक्ता आई बैंक नाम की संस्था को दे दी गई। इसके अलावा अमर उजाला की खबर है दिल्ली में डेंगू ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। निगम के आंकड़ों के हवाले से खबर दी गई कि इस साल दिल्ली में अब तक डेंगू के 3,791 मरीज रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि 17 मरीजों की जान जा चुकी है।
और चलते चलते अशोक, ये एक खबर है दैनिक जागरण में, 90 दिन तक आपको ईमेल और व्हाट्सएप संदेश रखने होंगे, यानी कि आप उन्हें डिलीट नहीं कर सकते।
जी,
बहुत बहुत शुक्रिया। और अब विशेष रिपोर्ट की, फैलाओ जी 11 ग्यारहवीं कड़ी में बात उनके बारे में, जिनकी पहचान सूफियाना कलाम से तो होती ही है, लेकिन वो कव्वाली के प्रणेता हैं। दक्षिणी दिल्ली के शांत और हरे भरे इलाके में सांझ पसरने लगी है। दिल्ली का ये वो इलाका है जहां ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियों की भरमार है। ओबराय होटल के सामने खड़े होकर आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि व्यस्त फ्लाईओवर के पार, संकरे रास्तों और गलियों से थोड़ी ही दूर मध्यकाल का एक शहर आज भी आबाद है।
यहां है खुशहाल और आबाद शहर, जिसके हर मोड़ पर चांद ने अपनी किरणें बिखेरी हैं और हर किरण में गुथी हुई मेरे टूटे दिल की एक फांक झिलमिला रही है।
Now we're in a crowded canopied section and it feels as if we're walking through a tunnel.
सड़कें तंग हो चली हैं जैसे भूल भुलैया हो। हम एक भीड़ भाड़ वाली जगह में पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी सुरंग से होकर आगे बढ़ रहे हों। दुकानों पर नमाजी टोपियां, चादरें, कबाब और गुलाब की कलियां बिक रही हैं। और जैसे जैसे हरा मेहराबदार रास्ता करीब आ रहा है, हमारी रफ्तार बढ़ गई है। ये रास्ता हमें महान शायर अमीर खुसरो की दरगाह तक ले जाएगा, जो नक्काशीदार स्तंभों और जालीदार खिड़कियों से घिरी हुई है। हर बृहस्पतिवार को इस सूफी मुस्लिम की दरगाह के पास फिरोजी कुर्तों में दमकते, उंगलियों में चमकीले जवाहरात पहने कव्वाल अमीर खुसरो के नाम से मशहूर कव्वालियां पेश करते हैं। और तब 13वीं सदी की दिल्ली के इस शायर की दुनिया जैसे आबाद हो उठती है और लगता है दक्षिणी दिल्ली के शानदार रेस्तरां, महंगे हैंडबैग्स की दुकानें और पाश्चात्य संगीत की सीडी बेचने वाली दुकानें यहां से कोसों दूर हैं। फारसी में लिखी गई या हिंदवी की मौखिक परंपरा में जीवित खुसरो की सूफी रचनाएं आज की उर्दू शायरी का शुरुआती रूप है। सूफी इस्लाम और हिंदू संस्कृति का ऐसा अद्भुत और कलात्मक समायोजन है कि आधुनिक भारत के निर्माता उन्हें सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक मानते हैं। लेकिन खुसरो की काव्य शैली महज हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के मतभेदों को मिटाकर उनके मेल मिलाप की ही नहीं है, बल्कि इसमें परंपराओं का समावेश है। और इसीलिए उनकी मजार उस शहर में है जिसे वो बेनतहा मोहब्बत करते थे और जहां आज भी तमाम मतावलंबियों का तांता लगा रहता है। कहते हैं मुगल बादशाह जहांगीर खुसरो के कलाम में मौजूद व्यंजनाओं के बारे में एक चुटकुला सुनाया करते थे। वो कहते थे, जब एक दरबारी गायक ने खुसरो से एक गजल के मायने समझाने को कहा तो बेचारे समझाते समझाते पस्त हो गए। खुसरो की रचनाओं में अर्थ परत दर परत खुलता है और संदर्भ बदलते रहते हैं। अपने कलाम की तरह ही खुद खुसरो भी सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक कौशल के नायाब नमूने थे। अमीर खुसरो अपने आप को तूतीय हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता कहते थे, जो भारत की विविधता के कारण खुद एक बहुअर्थी उपाधि है। खुसरो ने अपने लंबे जीवन के दौरान कई भूमिकाएं सफलतापूर्वक निभाई। खुसरो एक योद्धा, दरबारी गायक और सूफी भक्त तो थे ही, लेकिन इस सबसे बढ़कर वो हाजिर जवाब साहित्यिक प्राणी थे। सभी आश्रयदाताओं और कद्रदानों की रुचियों को समझने और सूफीवाद में विश्वास की वजह से ही उनका कलाम आज 700 साल बाद भी जिंदा है। गजलकार जावेद अख्तर।
हियर इज अ इंटेलेक्चुअल जायंट विद सच मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी।
खुसरो प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी और बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे। सूफी काव्य की अवधारणा, बोलियों और उर्दू भाषा के मेल का विचार, इन सब की शुरुआत खुसरो ने ही की थी और आज इनको हमने इस कदर अपना लिया है कि हमें याद भी नहीं रहता कि हम कब अनायास ही इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।
खुसरो की रचनाओं से हमें पता चलता है कि उनके पिता मध्य एशिया के तुर्क इलाके से आए थे और शायद गुलाम थे। उनकी माँ हिंदू थी जिन्होंने उनके पिता से शादी के बाद इस्लाम अपना लिया था। विवाह के 10 साल बाद जब उनके पिता लड़ाई में मारे गए तो उनकी माँ ने बचपन में ही सयाने हो गए अपने दूसरे बेटे यानी खुसरो को 8 साल की उम्र में उसके अमीर दादा के पास रहने के लिए भेज दिया। कहते हैं तभी उनकी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने बाद में उनकी जिंदगी बदल दी। इतिहास के प्रोफेसर नील ग्रीन कहते हैं,
अमीर खुसरो मीट्स निजामुद्दीन औलिया व्हेन ही इज अ चाइल्ड।
कहा जाता है कि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया से बचपन में मिले और ये मशहूर है कि तभी बाल शिष्य खुसरो ने, मैं कहूंगा कि मध्ययुगीन फारसी मोजार्ट की तरह, निजामुद्दीन से कहा, बल्कि उनके लिए ये शेर पढ़ा कि आप वो शहंशाह हैं कि जिसकी महल की छत पे कबूतर भी बैठे तो बाज बन जाए।
On the roof of his palace, it will become a hawk.
भारत की सूफी मुस्लिम परंपरा के महान संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उसी इलाके में हुआ था जहां खुसरो के पिता थे। किस्से कहानियों में मशहूर ये मुलाकात साहित्य के इतिहास में खुसरो की जगह पक्की करने में मददगार तो हुई, लेकिन उससे पहले खुसरो को लड़ाइयां लड़नी थी, कैद झेलनी थी, शराब के नशे में चूर होना था और शाही दरबार के कवि के रूप में बेमिसाल शोहरत का जीवन जीना था। खुसरो ने कम उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया, लेकिन आजीविका के लिए वो अपने पिता की राह चले और मुस्लिम शासकों की ओर से युद्ध का पेशा अपनाया। खुसरो ने मंगोलों के खिलाफ और इस्लाम के विस्तार के लिए कई अभियानों में हिस्सा लिया, पकड़े भी गए, दुश्मनों की कैद में भी रहे, लेकिन आखिरकार वो कैद से निकल भागे और दिल्ली वापस लौट आए। दिल्ली में वो सैनिक से कवि बन गए और अपनी पारिवारिक जान पहचान का इस्तेमाल कर शाही मजलिस तक पहुंच बना ली, जहां संगीतज्ञों और नौजवान लड़कों की सोहबत में शायर लोग आशु कविता करते, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे।
इन मुकद्दस हिंदू लड़कों ने बर्बाद किया है, पिलाई है मुझे, इन गेसुओं के पेचो खम में कैद खुसरो ताबेदार हो जैसे।
नील ग्रीन कहते हैं,
The king and his closest other companions gathering round, no doubt drinking wine, a great deal of wine.
सुल्तान और उनके नजदीकी साथी मिल बैठते, मैकशी के दौर चलते, शराब अमीर खुसरो और उस जमाने के और फारसी कवियों के काव्य का प्रमुख विषय था। सुल्तान या कोई और कदरदान महफिल में शराब के जाम पीते हुए, संगीत सुनते हुए अमीर खुसरो या किसी और साथी से किसी विषय पर चंद अशार सुनाने को कहते, जैसे यहाँ बैठे इस खूबसूरत लड़के के गालों पे जो तिल है उस पर कुछ सुनाइए, तो वो तुरंत कोई कविता बनाते और सुना देते, और अगर मिसरा अच्छा होता, कोई बढ़िया सा शेर होता, तो सुल्तान शायर की तरफ 1 या 2 सोने के सिक्के उछाल देता।
खुसरो जिस दौर में राजघरानों के दिलजोई कर रहे थे वो दिल्ली के इतिहास में बेहद उथल पुथल वाला दौर था। उनके प्रौढ़ जीवन में 5 सुल्तान गद्दी नशीन हुए और बर्बाद हुए। वो एक के बाद एक आश्रयदाता की शान में कसीदे पढ़ रहे थे और इसलिए बड़े से बड़े दरबार का हिस्सा बनते चले गए। जिस आखिरी दरबार का वो हिस्सा थे उसका केंद्र यही तुगलकाबाद में था। तुगलकाबाद जो कभी किले की चार दीवारी में बसा एक शानदार शहर था और आज आधुनिक दिल्ली के बेकायदा फैलाव में समा गया है। इन दरबारों में दुश्मनी, धोखा और हत्याओं का जोर था, जो किसी भी सृजनशील मानस के लिए बहुत अच्छा माहौल तो नहीं था। फिर भी खुसरो नित्य नए प्रयोग करते रहे और अपने कलाम में नयापन लाते रहे। जल्द ही वो अपने वक्त के सबसे पसंदीदा दरबारी शायर बन गए। लेकिन वो खुद को संरक्षकों के चरणों का गुलाम कह रहे थे, उनकी जूठन पर जिंदगी गुजारने का जिक्र कर रहे थे। तूतिये हिंद अमीर थे, बेहद प्रसिद्ध थे, लेकिन जाहिराना तौर पर अवसाद का शिकार भी थे।
कसीदों में रूह कहां होती है, अल्फाजो अंदाज कितना ही नया हो हसीन हो।
हालांकि दरगाह में अमीर खुसरो की भी कब्र है, लेकिन पूरी दरगाह उन्हें नहीं बल्कि उस शख्स को समर्पित है जो उनके बगल में दफन है, निजामुद्दीन, वही शख्स जो खुसरो को बचपन में उनके दादा के घर में मिले थे। जब खुसरो 50 साल के हुए तो रूहानी ताकत के लिए निजामुद्दीन की शरण में गए। सूफी संत की अपनी खानकाह थी, एक तरह का समानांतर दरबार जो दिल्ली की सीमा पर बसे ग्यासपुर में थी, और उनके शागिर्दों में कई कलाकार और बुद्धिजीवी थे जो महलों की राजनीति से पनाह चाहते थे। यहीं निजामुद्दीन के साथ खुसरो को स्थायी सुकून मिला। नील ग्रीन कहते हैं,
I can't help but think that it's really the stress of that environment that drove Amir Khusro.
मैं समझता हूं कि उस माहौल का जो तनाव खुसरो झेल रहे थे, कवि के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे आम इंसान के नाते जो दरबार में अपना काम करने की कोशिश कर रहा था, उसी ने उन्हें सूफी माहौल के एकांत सुकून और सहानुभूति की ओर खींचा। और ये तो हम पक्के तौर पर जानते ही हैं कि 50 साल की उम्र में वो अपना ज्यादा वक्त निजामुद्दीन औलिया के साथ बिता रहे थे।
खुसरो के जीवन काल में भारत में सूफीवाद खूब फला फूला। सूफीवाद ईश्वर से रहस्यात्मक एकात्मकता में यकीन रखता है। सूफीवाद के विभिन्न चरण और रहस्य किताबों से नहीं सीखे जा सकते, बल्कि आध्यात्मिक गुरु के नजदीक रहकर ही जाने जा सकते हैं। अब खुसरो खुद को ज्यादातर तुर्की हिंदी, भारतीय तुर्क कहते थे, जो इस बात का इशारा है कि उनके गुरु और उनकी जो साझी विरासत थी वो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। अब उनकी रचनाओं में सूफी समर्पण का आदर्श, गुरु और शिष्य की पहचान एक हो जाना नजर आने लगा था, और उनके कुछ गीतों में गुरु से उनके संबंधों में एक तरह की समानता, गहरी दोस्ती का भाव भी मिलता है, जिसकी सुल्तानों के साथ संबंधों में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।
मैं तू हो गया, तू मैं हो गया, मैं जान हूं तू बदन मेरा, अब से कोई कह न सके कि तू जुदा और मैं जुदा।
लेकिन खुसरो की सूफी काव्य रचनाओं या उनके फारसी कलाम से ज्यादा मशहूर हैं उनके गीत और उनके नाम से मशहूर कव्वालियां और गजलें, जो पिछले 700 सालों से भारत की मौखिक परंपरा में जीवित हैं और आज भी उनकी मजार पर गाई बजाई जाती हैं। भारत की आजादी के बाद के वर्षों में इनमें से कई गीत भारतीय सिनेमा ने भी अपनाए, और पूरे उत्तरी भारत में आज भी लोग सुकून के लिए अमीर खुसरो के गीतों का उदासी पूर्ण सौंदर्य पसंद करते हैं।
हमेशा की रिया बेइश्क आमा नानी।
मजे की बात यह है कि इनमें से कई गीत सचमुच खुसरो ने नहीं लिखे होंगे, लेकिन फिर भी खुसरो देश के अनौपचारिक आदर्श वाक्य, विविधता में एकता का प्रतीक बन गए हैं। जब गांधी ने हिंदू मुस्लिम संगीतकारों को एक साथ गाते बजाते सुना तो उन्होंने पूछा था, और मामलों में ऐसा भाईचारा कब देखने को मिलेगा? लेकिन खुसरो ने जिस सांस्कृतिक एकता और मेल की प्रेरणा दी थी, आज कई सत्ताधीशों को वो एक भ्रम, गैर जरूरी एहसास लगने लगा है। और मुझे फिर याद आता है मतभेदों से निपटने का खुसरो का कौशल। और जैसे जैसे मैं इस मध्ययुगीन दरगाह से दूर आता जा रहा हूँ, दिल्ली के नए इलाकों में लौट रहा हूँ, इस शहर की सभ्यता में खुसरो का भरोसा भी याद आ रहा है। जब उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ कोई खोरासानी, यूनानी या अरब आए तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ लोग उससे प्यार से, अपनेपन से पेश आएंगे, ताकि वो चैन से रहें और खुश रहें। फैला उजियारा में आज की कड़ी में आप सुन रहे थे अमीर खुसरो के बारे में। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज पटना जाएंगे, जहां वो अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इससे पहले के कार्यक्रम में आपसे हम विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार, भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज वॉशिंगटन में अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से मुलाकात करेंगी। अमरीका में रिपब्लिकन स्कॉट वॉकर ने राष्ट्रपति पद की रेस से हटने की घोषणा की है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने कहा है कि प्रवासियों के कारण यूरोप की सीमाएं खतरे में पड़ रही हैं और इस समस्या से एकजुट होकर निपटने की जरूरत है। और पोप फ्रांसिस क्यूबा की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में सेंटियागो पहुंच गए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत के इस अंक में बस इतना ही। एक घंटे बाद यानी कि विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।